तो बहरहाल आगे हमारा एक और भी बहुत ही हिट टॉपिक कि जो हमारे कल्चर में बहुत ही ज़्यादा लोग इस पे भी सोच विचार करते हैं, और वो क्या है, नमाज़े तस्वीह। एक्सट्रीम है इसमें बुनियादी तौर पे, कुछ कहते हैं बस यही पढ़ लो तो काफ़ी है, फ़र्ज़ भी ना पढ़ो चाहे, बस एक बार ये पढ़ लो। कुछ कहते हैं कि बिल्कुल भी ना पढ़ो। ठीक है, लोग तो लोग ही होते हैं। आइए देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या फरमाया। अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से फरमाया, या अब्बासु या अम्माहु अला ओती का अला अमनाहु का अला अहबू का अला अफ़लु बिका अशरा खिसालिन इज़ा अंता फालता ज़ालिका गफरल्लाहु लका ज़म्बक ज़म्बका वलहु व आखिरहु قديمه وحديثه خطاه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة ثم تركوا فتقولها وأنت راكع نشرا ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا فذلك 75 في كل ركعة تفعل ذلك في 40 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة اے چچا جان عباس رضی اللہ عنہ، کیا آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی تحفہ پیش نہ کروں؟ مراد یہ کیسا کروں؟ کیا میں آپ کو درجہ ذیل عمل کی وجہ سے 10 اچھی خصلتوں والا نہ بنا دوں؟ یعنی یہ ایک پروکنگ سٹائل ہے محبت دلانے کا، رغبت دلانے کا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کسی کو کچھ کہنا نا، ایک دم اس کو کہنے کی بجائے آپ پہلے ذہنی طور پہ تیار کیجئے، ٹھیک ہے؟ جب وہ تیار ہوگے تو آپ بتایا جا رہا ہے کیا کہ جب آپ یہ عمل کریں تو اللہ ذوالجلال آپ کے اگلے پچھلے نئے پرانے انجانے میں اور جانے بوجھے کیے ہوئے تمام چھوٹے بڑے گناہ، پوشیدہ اور ظاہر گناہ معاف فرما دے گا۔ وہ 10 خصلتیں یعنی 10 چیزیں کیا ہیں؟ آپ 4 رکعت نفل اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورت فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھیں۔ جب آپ اس قرت سے فارغ ہو جائیں تو قیام ہی کی حالت میں یہ کلمات 15 مرتبہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ رکوع میں جائیں، تسبیحات رکوع سے فارغ ہو کر رکوع میں انہی کلمات کو 10 بار دہرائیں۔ پھر آپ رکوع سے اٹھ جائیں اور سمیع اللہ لمن حمیدہ وغیرہ سے فارغ ہو کر 10 بار یہی کلمات پڑھیں۔ پھر سجدے میں جائیں اور سجدے کی تسبیحات اور دعائیں پڑھنے کے بعد یہی کلمات 10 بار پڑھیں۔ پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور اس جلسے میں جو دعائیں ہیں وہ پڑھ کر 10 بار یہی کلمات دہرائیں۔ پھر دوسرے سجدے میں چلے جائیں، پہلے سجدے کی طرح 10 بار پھر یہی تسبیح ادا کریں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور جلسہ استراحت میں کچھ اور پڑھے بغیر 10 بار اس تسبیح کو دہرائیں۔ یوں ایک رکعت میں کل 75 یعنی 75 تسبیحات ہو جائیں گی۔ اس طرح 4 رکعت میں یہ عمل دہرائیں۔ اگر آپ طاقت رکھتے ہوں تو نماز تسبیح روزانہ 1 بار پڑھیں، اگر آپ ایسا نہ کر سکتے ہوں تو ہر جمعے میں 1 بار پڑھیں، یہ بھی نہ کر سکتے ہوں تو ہر مہینے میں 1 بار پڑھیں، یہ بھی نہ کر سکے تو 1 سال میں 1 بار پڑھیں۔ अगर आप साल भर में भी एक बार ऐसा ना कर सकते हो तो जिंदगी में एक बार जरूर पढ़ें। अब देखिए कि ये रिवायत देखेंगे हम, अबू दाऊद की रिवायत है, हदीस 1297, सनद इसकी हसन है। इसी तरह इब्ने माजा में हदीस 1386 है, इब्ने खुजैमा में 1216 और ज़ाहिबी ने अल मुस्तदरिक में पहली जिल्द 318 में सही का। अब देखिए हदीस सही है, हम ऐसी किसी भी चीज़ को ये नहीं कह सकते कि ये ज़ईफ़ है ये बातिल है। बस दफ़ा कुछ चीज़ें जिसमें इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा एग्जेजुरेशन के साथ किसी नेकी की बात हो तो कुछ लोग उसके बारे में थोड़ी सी शिद्दत बरतते हैं। आइए ज़रा सा इस हदीस के ऊपर असलाफ की बहस सुनते हैं, क्योंकि मारूफ रिवायत है तो इसमें आपको दोनों तरह की बातें दिखेंगी। मसलन हाफिज इब्ने हजर अल अस्कलानी, जानते हैं आप इनको, ये कौन थे, किस साला पाए की ये शख्सियत है, क्या इन्होंने किताबें लिखी, नहीं जानते हम। दुआ कीजिए अल्लाह हमारी जिंदगियों में बरकत दे कि हम अपने बच्चों को बड़ी इब्तदाई उम्र से इल्म की दुनिया में डालें ताकि कम अज़ कम बड़े होने तक वो क्या कुछ पढ़ चुके हों। इनकी किताब अल खिसालुल मुकफ़िरतु व अमालिल अज़कार, इसमें लिखते हैं कि यह हदीस कसरते तुरक, कसरते तुरक कहते हैं कई रास्तों से इसकी सनद मिलती है, तुरक तरीके और तरीका रास्ते को कहते हैं ना, कुरान में तराई का अकीदा दा आता है सूरह जिन में, तो रास्ते कहले मुरा ये कि बहुत सारे लोगों ने यह हदीस बयान की है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई एक खबर सुनाए आके आज शहर में ये हुआ तो हो सकता है आप जुटला दें, कैसे कैसे हो सकता है, फिर एक और शख्स आए, दो तीन तीन चार आपको और मैसेज आ जाए तो आप सोचने में माहिर हो जाएंगे ना कि ये बात सच है, तो ये मुराद है इधर। शेख अल्बानी रहमहुल्ला फरमाते हैं कि इमाम हाकिम और हाफिज ज़ाहबी ने इस हदीस की तकवीयत की तरफ इशारा किया है, यानी स्ट्रॉन्ग नरेशन है और ये हक है क्योंकि इसके बहुत से तुरक यानी बहुत सारे डिफरेंट तरफ से रास्ते हैं। अलामा मुबारकपुरी ने मेरा हदीस 1339 की शरह में और शेख अहमद शाकिर रहमहुल्ला ने भी इसे हसन कहा, जबकि ख़तीब बगदादी इमाम नववी ये दो मुख्तलिफ आलिम थे, इन्होंने तहजीबुल अस्माउल लुगात में और इब्ने सल्लाख ने इसे सही कहा। चलिए अब इसके ऊपर एक नोट लेते हैं, नमाज तस्बीह में तस्बीहात तशहुद में अत्तहियात से पहले पढ़ें बखिलाफ दूसरे अरकान के। नमाज तस्बीह के बाद पढ़ी जाने वाली दुआ की सनद सख्त ज़ईफ़ है, इसके रावी अब्दुल कुद्दूस बिन हबीब को हाफिज हैसमी ने मतरूक और अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कज़्ज़ाब कहा है। अहले दुनिया को 7 दिनों की मुद्दत मालूम है, मुसलमानों के यहाँ जुमे से, यहूदियों के यहाँ हफ्ते से और ईसाइयों के यहाँ इतवार के दिन से इस मुद्दत का आगाज़ होता है। जिस तरह हफ्ता एक ख़ास दिन का नाम है और इन 7 दिनों की मुद्दत को भी हफ्ता कहते हैं, इसी तरह जुमा भी एक ख़ास दिन का नाम है और इन 7 दिनों की मुद्दत को भी जुमा कहते हैं। अरबी में इस मुद्दत को असबू, असबू कहते हैं हफ्ता यानी वीक भी कहते हैं। इस तफसील को सामने रखे तो मालूम हुआ कि ये हदीस यानी जो मस्कूरा है जिसका जिक्र हो रहा है, इसका मंशा ये नहीं कि नमाज तस्बीह हर जुमे के दिन पढ़ो, बल्कि मकसद ये कि पूरे 7 दिनों की मुद्दत में किसी वक्त भी पढ़ लो। चुनाचे सिर्फ जुमे का दिन नमाज तस्बीह के लिए खास करना सही नहीं। याद रहे कि इस हदीस शरीफ में नमाज तस्बीह बाजमात अदा करने का जिक्र नहीं है, सिर्फ इनफरादी अमल के तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा जान को इसकी तरगीब दी है। लिहाजा जो मुसलमान नमाज तस्बीह अदा करना चाहे इसे चाहिए कि पहले नमाज तस्बीह का तरीका सीखे, फिर इसे तन्हाई में अकेला पढ़े। और ये रवैया भी इंतहाई मोहलक है कि बंदा फ़र्ज नमाजों पर तो तवज्जो ना दे मगर नमाज तस्बीह बाजमात अदा करने के लिए हर वक्त बेताब रहे। लिहाजा अब पहली बात, फ़र्ज नमाजों के तारिक यानी जो फ़र्ज ही नहीं पढ़ता, पहले तो उसको सच्ची तौबा करनी चाहिए और फ़र्ज नमाजों की मुकम्मल हिफाजत करनी चाहिए, फिर वो नमाज तस्बीह पढ़ेगा तो इसे यकीनन फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। मैं दो चार जुमलों में इसको एक सिंपल नोट में दे दूं आपको कि नमाज तस्बीह की हदीस मौजूद है, ज़राए से चूके मिली, इससे पता चलता है कि ये एक वाकई मजबूत रिवायत है, इतने मुख्तलिफ लोग इसके बारे में झूठ नहीं कह सकते। ठीक है, फिर दूसरी बात है कि मुबालगे की हद तक ये कहना कि हर जुमे के दिन पढ़ा जाए ये दुरुस्त नहीं, वंस अ वाइल कभी भी पढ़ें यानी पूरे हफ्ते में एक दफ़ा पढ़ ली जाए। फिर अगली बात हमने इसमें देखी कि जो फ़र्ज नमाज नहीं पढ़ता उसके सुन्नत और नफिल भी कबूल नहीं होते, तो अगर आप नमाज़े तस्बीह पढ़ते हैं, जो इसके ज़ाहिर के काफ़ी टाइम लग जाता है इसको पढ़ने में, तो उससे पहले शर्त है कि अपने फ़राइज़ पूरे कीजिए। फ़र्ज़ पूरे करके इसको पढ़ेंगे तो अजर मिलेगा, फ़र्ज़ नहीं पढ़ेंगे और सिर्फ ये पढ़ेंगे तो ना इसका अजर ना उसका अजर। ये तो ऐसे ही है ना कि आप कंपलसरी चीज़ों को छोड़कर ऑप्शनल चीज़ों पे चले जाएं। पुलाव बनाएं और चावल ही ना डालें, तो जो मर्जी डालते रहें, सब्जी, गोश्त, दाल, जो मर्जी, लेकिन चावल तो नहीं डाले, पुलाव तो नहीं बनेगा ना। तो दीन की कुछ लीस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको सामने रखना है। क्या सीखा? कि मुश्किल और गैर मामूली हालात में नफिल इबादत से मदद लेनी चाहिए, क्योंकि नवाफिल से इंसान अल्लाह का कुर्ब लेता है, मगर नफिल इबादत में भी तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अपनाना चाहिए। और इसी तरह हमने सीखा कि नमाज इस्तखारा हर वो शख्स खुद करे जो अल्लाह ताला से रहनुमाई लेना चाहता है। फिर दूसरों से इस्तखारा करवाने के मुरवजा तरीक़ों से बचना चाहिए। नमाज इशराक का मामूल बनाना है और नमाज तस्बीह पढ़ने की कोशिश करनी है, यानी पूरी कोशिश कीजिए और उसके बाद फिर अल्लाह ताला आपको उसमें जो भी रास्ता सुझा दे उस पर अमल करें।